ओम शांति। कहीं भी आज से पहले आप गए होंगे, अपने आप जहां होटल आदि का प्रबंध करते हैं, कहीं किसी प्रोफेशनल ने भी, जिनको धन देते हैं डायरेक्ट, उसने भी इतने प्यार और मिठास से कभी कुछ नहीं समझाया होगा। जिस तरह से पिछले 15-20 मिनट से इंदिरा बहन समझा रही हैं, आपको क्या लगता है इंदिरा बहन का घर है ये? कोई भी इतने अच्छे से नहीं समझाता है और इतना प्यार से छोटी छोटी बातों को इतने आध्यात्मिक रहस्य की तरह समझाया आपने। बहुत बहुत धन्यवाद इंदिरा बहन जी का, क्योंकि इस आपके पूरे प्रोग्राम में हमारे जो बड़े वरिष्ठ महारथी हैं, आदरणीय शीलू दीदी हैं और भी जो आपको स्पीकर्स मिलेंगे वो तो हैं ही हैं, लेकिन जो सूत्रधार है उसका बहुत महत्व होता है। तो इसीलिए हमारे बहुत अच्छे सूत्रधार, बहुत आध्यात्मिक पर्सनैलिटी, बहुत जॉयफुल पर्सनैलिटी इंदिरा बहन जी का हम जोरदार करतल ध्वनि से ये धन्यवाद देने का तरीका है। क्योंकि हम पढ़ ही रहे हैं और बार बार हम इसकी बात करेंगे जॉयफुल लिविंग की, क्योंकि आप इस तरह की एक माया नगरी में रहते हैं, आपको यहाँ खेतों में, जंगल में, यहाँ वहाँ घूमते हुए लोग, कई बार ऐसे लगता है कि इंटरनेट की दुनिया से, बहुत सारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की दुनिया से जो सिंपल लोग हैं वो दूर हैं, लेकिन आप ये देखेंगे कि वो ज्यादा खुश रहते हैं कि नहीं, पावरफुल भी ज्यादा हैं, ज्यादा एडजस्टिव हैं, ज्यादा परोपकारी हैं। और जो जितने मशीनी युग में, डिजिटल वर्ल्ड में रहते हैं, वो बस डिजिटल हो जाते हैं। तो इसीलिए आप रिलैक्स होने के लिए यहाँ आते हैं, इतने बढ़िया माया नगरी से निकलकर एक प्राकृतिक नगरी में आप पहुंचे हैं। जब आप साइलेंट वॉक के लिए जाएंगे तो आप खुद देखेंगे कि कितना नैसर्गिक सौंदर्य यूं ही बिखरा पड़ा है। आपको अपने घर का एक छोटा सा लॉन मेंटेन करने के लिए स्पेशल गार्डनर रखना पड़ता है, और यहाँ प्रकृति, परमात्मा ही इतना बड़ा गार्डनर है जो इतने बड़ा सुंदर सौंदर्य, नेचुरल ब्यूटी यूं ही फैला रखी है उसने, फ्री में, कोई उसको पैसा नहीं देना पड़ता। ऐसी ही चीजें उसने आपको भी फ्री में दी हुई है। हमारे दो कान मिलकर एक ही काम करते हैं, सुनने का, दो आंखें मिलकर एक ही काम करती हैं, देखने का, एक मुख है दो काम करता है, क्या क्या, खाने का और बोलने का, इसीलिए उसकी सबसे ज्यादा संभाल रखनी पड़ती है। जितने भी अखबारों में बातें निकलती है ना, वो इन्हीं की निकलती है, देखने सुनने की नहीं निकलती, क्या बोला और कौन क्या खाया और कैसे बीमार हो गया, इसी की बातें आप ज्यादा सुनेंगे। इसीलिए जो सिंगल चीज ज्यादा काम करे, हार्ट धड़कता भी है, पंप भी करता है, जीवन दान भी देता है, उसका ज्यादा अटेंशन रखना पड़ता है। ब्रेन सिंगल है, उसका ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, बहुत सारे काम करता है ब्रेन। तो आप सोचिए कि जब तक आप यहाँ रहेंगे, इन चार दिनों में मुख पर संभाल करनी सीखेंगे, तो आप बहुत आनंद का जीवन जिएंगे। अच्छा खाएंगे, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, ठीक खाएंगे नहीं तो स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा, अच्छा बोलेंगे तो स्थिति अच्छी रहेगी। तो स्थिति और स्वास्थ्य दोनों चीजों को ठीक रखने का तरीका, एक आपका मुख, आपका माउथ क्या क्या काम करता रहता है, देखिए, आप बड़ा ध्यान से चबा चबा कर खाएं, इसीलिए 32 दांत मिले हुए हैं। आप चबा चबा कर ध्यान से बोलें, इसीलिए 32 ताले लगे हुए हैं जीभ के आगे, है ना, और फिर ऊपर मास्टर लॉक कि नहीं बोलना है तो चुप रहो, घर का वातावरण ठीक रहो, एक बार चुप हो जाओ, बात निकल जाने दो, टाइम निकल जाने दो, है ना। तो इसीलिए आप सोचिए कि कितनी अच्छी चीजें हम यहाँ सीखते हैं, भगवान ने हमें नेचुरल रूप से दी है, उसको ठीक रखने का तरीका है कि हम खाने और बोलने, इन दो चीजों पर संयम रखना सीख कर जाएंगे। अभी ब्रेकफास्ट किया, अभी कुछ और आ गया तो कुछ और खा लिया, अभी वहां कुछ और मिल गया तो कुछ और खा लिया, कभी मीठा कभी नमकीन कभी खट्टा कभी ठंडा कभी गर्म, आप खुद फील करेंगे कहां है सेल्फ कंट्रोल। इतनी छोटी सी चीज के लिए भी नहीं है, खाने के लिए भी नहीं है, तो बोलने के लिए तो बहुत ही मुश्किल काम है। बोलना थोड़ा सा भी किसी ने तीली लगाई और आप भड़क उठे, और भड़क उठे तो क्या हो गया, बम्बारमेंट। और फिर यहां से जो बम्बारमेंट हुई उसका रिजल्ट रिलेशन खराब, आपका स्वास्थ्य खराब, सारी रात आपको नींद नहीं आएगी, बीपी हाई हो जाएगा, जिसको गलत बोल दिया वो भी सारी रात बददुआएं देगा, वो उसको भी नींद नहीं आई तो आपको नींद कैसे करने देगा। सोचिए वहां प्रैक्टिकल सी बात के नीचे ग्राउंड फहीने से मकान का किराया नहीं दिया, बहुत टेंशन थी, 75,000 रुपए हो गए। उसने धमकी दे दी कि मैं आपको निकाल दूंगा, इस बात की भी टेंशन थी, बेइज्जती बहुत होगी, तो रात को नींद नहीं आ रही थी। वाइफ कहती सो जाओ ना, आराम से सो जाओ, वो कहते ऐसे कैसे सो जाओ, सैलरी आती नहीं है उससे पहले खत्म हो जाती है, ये क्या चक्कर है। और अब सुबह वो सारे एनक्लेव में पूरे इसमें अपार्टमेंट में कितना हंगामा होगा, कितनी बेइज्जती होगी, तो कहती अभी तो सो जाओ ना, अभी तो आराम से सो जाओ, सुबह देख लेंगे। तो सुबह क्या देखेंगे, तो दोनों की बहस हुई, तो फिर वाइफ ने फिर प्यार से कहा सो जाओ मैं कुछ करती हूं। उसने क्या किया, रात को 1 बजे जाकर मकान मालिक की जोर से डोरबेल बजा दी, नीचे से ही फर्स्ट फ्लोर की डोरबेल बजाई जोर से, वो एकदम हड़बड़ा के उठे, उनको लगा कोई इमरजेंसी ना हो गई हो। क्या हुआ, क्या हुआ मैडम, क्या हुआ, कहते हम नीचे रहते हैं आपके टेनेंट्स हैं। अच्छा अच्छा, 1 बजे रात को क्या इमरजेंसी आ गई। इमरजेंसी कुछ नहीं है, आपने हमें कल आखिरी दिन दिया हुआ है, आखिरी टाइम दिया हुआ है ना कि आप कुछ एक्शन लेंगे। तो वो कहते हाँ अगर किराया नहीं आया तो एक्शन तो लेना ही पड़ेगा ना। तो वाइफ कहती आप, वो नीचे की वाइफ कहती आप सोच लीजिए आपने क्या करना है, क्योंकि कल भी हमारे पास नहीं है किराया देने को। क्या रिजल्ट हुआ होगा, हम तो डूबेंगे सनम, साफ तुमको भी ले डूबेंगे, भाई हमें तो नींद आनी चाहिए, हम तो सो नहीं पा रहे, आप भी ना सो। क्यों हुआ ऐसा, आदत बन गई है, टेंशन है तो टेंशन ही ट्रांसफर करेंगे ना, जिसके पास जो चीज है वही तो देगा। तो उस बेचारे के पास टेंशन थी, उन्होंने कहा चलो हम तो आराम से सोए, अब ये सोचेगा इसने क्या करना है, और मकान मालिक सारी रात जागता रहा, सुबह किस किस को फोन करना है, किसको बुलाना है, अगर ये ऐसे ओपोज करेंगे तो ऐसे करना, वो सारी रात जागता रहा। तो इसीलिए अपने आप को हम कुछ चीजें समझा दें, यहां प्यार भरा होगा, करुणा भरी होगी, दया भरी होगी, खुशियां भरपूर होंगी, तो हम वही बांटेंगे। यहां टेंशन है, दुख है, परेशानी है, तो वही बांटेंगे। तो इसीलिए भर के जाएं, खाली है तभी तो और क्या रहेगा, खाली में तो धुआं होता है ना बस, तो वो धुआं ही फैल रहा है। तो अब खुशियां फैलें, इसके लिए पहले अंदर से परोपकार की भावना, मेरे पास जो चीज नहीं है तो भी मैं खुश रखना सीखूं, दूसरे को एंथुसियास्टिक बना के रखूं, तो आपका जील एंड एंथुसियाज्म बढ़ता जाएगा। तो ये चीजें हमारे पास सबके पास बहुत है, नेचुरल है, लेकिन हमने ये सोच के मेरे साथ दुनिया ने क्या किया, मुझे दुनिया ने क्या दिया, मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैंने इतना किया उन्होंने क्या किया, ये बातें सोच सोच के पास्ट को अपने पास लपेटे रखते हैं, तो हालत क्या हो गई, प्रेजेंट की सुख नहीं ले पा रहे, फ्यूचर की अच्छी प्लानिंग नहीं कर पा रहे, क्योंकि यही धुआं यही मिट्टी यही आंधी सब पर छा गई है। इसीलिए अब यहां जैसे इंदिरा बहन ने बताया कि पर्दा हटा दें, पर्दा अपने आप हट जाएगा पीछे से, इतनी तेज लाइट आएगी। तो इसीलिए अपने आप को रोशन कर लें, सब तरफ रोशनी फैल जाएगी, परिवार में घर में बच्चे हैरान होंगे मम्मा में कुछ चेंज आ गया, ये वैसे तो नहीं लग रहे जैसे गए थे, अब जरा रिएक्ट कम करते हैं मुस्कुराते ज्यादा हैं। एक ने तो पूछ लिया मम्मा कितने दिन का प्रोग्राम है ये, भाई वहां से सीख कर आए हो तो कितने दिन खुश रहना है कि फॉर एवर है। बेटा, माँ कहती है बेटा जब मैं यहाँ के मेडिटेशन सेंटर में जाना शुरू करूंगी ना तो कोशिश करूंगी फॉर एवर रखूं, नहीं तो उसको भी पता है, देखो 10 साल के बच्चे को भी पता है कि थोड़ी देर ही असर रहता है, सोडा वाटर जैसा है, ढक्कन खोलते हैं तो इसीलिए आप सबके लिए हार्दिक शुभकामनाएं, दुआएं। आप यहां भी कंट्रोल करना सीख कर जाएं, यहां भी कंट्रोल करना सीख कर जाएं। हम सब ने सीखा है, हम सब उसी दुनिया से आए हैं, बहुत गुस्सा आता था, बातें दिल को लग जाती थी, परेशानी होती थी, सब उसी दुनिया से आए हैं और सब कुछ यहां आके, क्योंकि किसी को कुछ भी सिखाया नहीं जा सकता, हम यहां सिर्फ एनवायरमेंट दे रहे हैं आपको, क्योंकि उस एनवायरमेंट में सीखना इजी होता है। आपके घर में जो आपके बच्चे हैं वो आपसे सीखने के लिए नहीं आए हैं, वो सिर्फ आपको देखने के लिए, आपसे अपना कर्जा वापस लेने के लिए और पालना लेने के लिए आए हैं। आप उन्हें भाषण नहीं सुना सकते, यहां तो आप स्पेशल आए हैं ना सीखने के लिए, तो हम तो आपको सुना सकते हैं। इसीलिए आप यहां खूब एंजॉय करें। आप बच्चे आपके पास सीखने नहीं आए तो आपको वहां एग्जाम्पल बन के रहना पड़ेगा, वो आपका भाषण नहीं सुनना चाहते, वो आपको देखना चाहते हैं। तो हम यहां से इतने तेजोमय होकर जाएं कि अपने आप दिखे, अपने आप उनको समझ में आ जाए कि देयर इज सम चेंज, कुछ अच्छा तो हो रहा है, वातावरण में बदलाव तो आए। सिर्फ आपका जल्दी उठना ही घर के वातावरण को बहुत अच्छा कर देगा, जो आप जल्दी उठने की आदत डाल लेंगे तो। तो इसीलिए आपको अमृत वेले से लेकर रात तक खुश रहने की, मुस्कुराने की हार्दिक शुभकामनाएं। जीवन आपका ऐसा ही खुशनुमा बने जैसा आज है, जैसे रिलैक्स आप आज बैठे हैं ऐसे हमेशा रिलैक्स रहें। थैंक यू वेरी मच, ओम शांति।
तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारी आदरणीय कविता दीदी का, बहुत ही सुंदर तरीके से आपके सामने थीम को एक्सप्लेन किया। और अभी मैं निमंत्रण देती हूँ हमारी आदरणीय राजयोगिनी शीलू दीदी जी को मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। करतल ध्वनि से हम स्वागत करें, सत्कार करें, अभिनंदन करें। गायत्री दीदी भी आ जाए ऊपर मंच पर। और शीलू दीदी, मैं समझती हूँ आप में से बहुत लोग दीदी को पहले से ही जानते हैं, क्योंकि दीदी हमारी टीवी में आती रहती है, टीवी हाँ, और साथ साथ दीदी कोलावा से निकले हुए हैं। तो दीदी कोलावा से ही निकले हैं, प्राइमरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन सब कुछ मुंबई माया नगरी से ही हुआ है, लेकिन वो भी कोलावा से, कोलावा में रहते हुए, लेकिन फिर भी एक एग्जाम्पल है कि माया नगरी में रहते हुए भी जब भीतर झांका तो माया नगरी का प्रभाव नहीं पड़ा, इतनी ताकत है भीतर झांकने में, जिसका एग्जाम्पल हमारी दीदी हम सबके सामने उपस्थित है, हम देख रहे हैं। तो दीदी ने बाल्यकाल से ही इस ज्ञान को समझा, 12 वर्ष की उम्र में, करीब 11 वर्ष 12 वर्ष की उम्र थी तब भी आप इस विद्यालय के संपर्क में आए, और तब से ही उस ज्ञान को जैसे जैसे देखते गए, चित्रों को सुनते गए लोगों से, दीदी कहते हैं मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैं कोई नई चीज सुन रही, मुझे लगता था हाँ ये सब मुझे पता है, ये सब मुझे पता है, मुझे सिर्फ कोई क्या कर रहा है, रिमाइंड करा रहा है। तो आप सोच सकते हैं पूर्व जन्म की भी उनकी स्मृतियां कितनी इसी ज्ञान को लेकर मजबूत रही होगी, जो इस जन्म में आकर अगर कोई वो बात सुनाता है तो लगता है कि ये तो कुछ नया नहीं, जैसे कहा ना बालक टैलेंटेड था लेकिन ध्यान नहीं दिया, बुद्धि से निकल गया, लेकिन ध्यान दिलाया तो सब कुछ। लेकिन जैसे कहते जन्म जब शरीर छोड़ते हैं तो हमारी पुरानी स्मृतियां दब जाती हैं, लेकिन नया जन्म लेते हैं कोई थोड़ा सा भी स्पर्श देता है वो निखर के आ जाती है। तभी कहते हैं पत्थर मौन होता है मूर्ति बनने से पहले, पत्थर मौन होता है मूर्ति बनने से पहले, शब्द मौन होते हैं गीत बनने से पहले। बीज मौन होता है धरती में जाने से पहले। इन्हें जरूरत होती है किसी अच्छे स्पर्श की, और जो ही स्पर्श मिलता है उनका प्रभाव बाहर निकल आता है। तो दीदी को भी वही प्रभाव मिला, स्पर्श मिला आध्यात्मिक ज्ञान का, और वो आध्यात्मिक धारा बह निकली। और उनके सानिध्य में रहकर आप सबको भी वो आध्यात्मिक स्पर्श यह मिलेगा कि अंदर में जो झरना है वो आपका भी फूट पड़ेगा, और बाहर वो आध्यात्मिकता की धारा जिसको कहेंगे शांति, प्रेम, खुशी, आनंद, सब बाहर निकल कर आएगी और जीवन सचमुच खुशनुमा बन जाएगा। तो दीदी के सानिध्य में रहकर हम ये पूरा रिट्रीट करेंगे। दीदी ने जैसे कहा एजुकेशन मुंबई से, मुंबई यूनिवर्सिटी से आपने बीएससी किया है, और बीएससी के बाद लक्ष्य तो बचपन से ही था लेकिन एजुकेशन भी पूरी करनी थी। तो एजुकेशन पूरी करने के बाद दीदी ने अपना संपूर्ण जीवन मानवता की सेवा के लिए समर्पित किया। 69 में आपने अपनी डिग्री प्राप्त की। डिग्री अभी मिली नहीं थी, परीक्षा देकर आए थे, परीक्षा पूरी हुई और दीदी यहाँ पर आए, और यहीं से अपना रिजल्ट आने से पहले ही समर्पण का मन बना लिया। और फिर यहीं से दादियों ने बड़े प्यार से ट्रेनिंग आदि देकर आपको भारत के विभिन्न स्थानों पर भेजा, जैसे कि राजकोट, हैदराबाद, बैंगलोर आदि आदि स्थानों पर आपने सेवाएं दी। और फिर आप विदेश भी गए, नैरोबी में, अफ्रीका में, और साथ साथ मॉरिशस में। तो 69 से लेकर कुछ वर्ष तक आप भारत में सेवा करते रहे। फिर आप 74 में विदेश गए, नैरोबी और मतलब अफ्रीका के अलग अलग स्थानों पर, वहां पर भी जाकर सेवाएं करके काफी सेवा केंद्र खोलने के निमित्त बने। फिर मॉरिशस गए, वहां पर भी सेवाएं की, सेवा केंद्र खोलने के निमित्त बने। और फिर वहां से जब पार्टी लेकर आए, जैसे गायत्री बहन आप सबको तैयार करके लाई है ना, तो आपको नयों को लेकर आई है। दीदी रेगुलर स्टूडेंट जो बन गए थे उनकी पार्टी लेकर आई यहाँ पर। बहुत बड़ी पार्टी थी, सबसे पहली पार्टी विदेश से आने वाली जो दीदी लेकर आई थी, बहुत बड़ी पार्टी। उस समय में दीदी कितने लोगों को लेकर आए थे? 30 लोगों को उस समय में लेकर आना बहुत बड़ी बात होती थी, और वो भी विदेश से। तो जब वो पार्टी को लेकर आए उनकी भी पालना हुई। फिर दीदी को एक बहुत सुंदर तोहफा दादी ने दिया कि आपको अब इस धरनी पर रहकर देश विदेश की सेवाएं करनी है। तो तब से 76 से लेकर दीदी यहीं पर बेस्ड है, यहीं पर बेस्ड होकर देश विदेश में ट्रैवल करते हैं। दीदी को एक बहुत बड़ा सुंदर वरदान परमात्मा ने दिया हुआ है, आप हर की पौड़ी हैं। जैसे गंगा में स्नान करने के लिए जाते हैं ना, लेकिन वहां पर एक स्थान है हर की पौड़ी, जहां सभी लोग आते हैं। तो बाबा ने आपको बहुत सुंदर, परमात्मा ने वरदान दिया, आप यहां रहकर सेवा करो, देश विदेश यहां पर आपके सानिध्य में आध्यात्मिक स्नान करने आएंगे। और साथ साथ और एक सुंदर वरदान जो आपको मिला है कि आपकी जीवा पर मां सरस्वती, विद्या की देवी मां सरस्वती हर समय विराजमान होंगी, और साथ साथ आपके अपने ही पूर्व कर्मों का, पूर्व जन्मों का संस्कार कहे कि आपके जीवन में नम्रता, मधुरता और धैर्यता की त्रिवेणी नदी कहे, क्या कहे, सर्वत्र हमेशा बहती ही रहती है। आप सुनेंगे स्वयं, आप प्रैक्टिकल उनको देखेंगे और आप सब अनुभव करेंगे। विदेश में ट्रैवल करते दीदी, बहुत शुरू से ही विदेश में ट्रैवल करते, आज दिन तक आपने करीब 75 देशों की यात्राएं करके देश विदेश के हमारे भाई बहनों को आध्यात्मिक ज्ञान से न सिर्फ रंगा है लेकिन उनके जीवन को खुशनुमा जीवन बनाया है, परमात्मा का सानिध्य प्राप्त कराया है। हमारे मधुरवाणी ग्रुप भी पहुंच गए और साथ साथ में दीदी हमारी जो आज पीस ऑफ माइंड चैनल जो 24 घंटा चलती है, लेकिन उसकी भी शुरुआत कहां से हुई थी, तो दीदी ही उस क्षेत्र में पायोनियर रही है। सबसे पहले ब्रह्मा कुमारीज की ओर से टीवी में प्रेजेंटेशन आपके द्वारा हुआ, जी जागरण उस समय होता था जी टीवी, और उस समय दीदी ने प्रस्तुति प्रदान की और वहां से लेकर सफर कैसे तय होता गया, जो आज 24 आवर्स हमारा पीस ऑफ माइंड चैनल चलता है घर घर में, और घर घर में व्यक्ति उसको सुन सुन के भी राहत अनुभव करता है। तो अनेक विशेषताओं से संपन्न राजयोगिनी आदरणीय शीलू दीदी जी का हम पुनः पुनः हार्दिक स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं। और यहाँ पर भी देश विदेश की जो गतिविधियां चलती है आप उसको बहुत बखूबी कोऑर्डिनेट करते हैं। अभी हमारे पास हमारे मधुरवाणी ग्रुप पहुंच गए हैं, जैसे कहा कि आपके आने से सबको खुशी है कि हमारे प्यारे भाई बहने आ गए हैं। तो आवाज आ रही है जैसे उस गगन से, संगीत बज रहा है जैसे पंखे के पवन से। अरे जब इतने सारे भाई बहने आ गए हैं अपनी लगन से, तो मधुरवाणी ग्रुप पधारो और प्रस्तुत करो अपना स्वागत गीत बड़े ही प्यार से, बड़े ही प्यार से। तो ये हमारे सतीश भाई और हमारे हल्दर भाई दोनों मिलकर उनके दिल में आपके स्वागत के लिए जो भावनाएं उभर रही हैं, उनको गीत के माध्यम से आप सबके सम्मुख प्रस्तुत करेंगे। दोनों ही भाई इस यज्ञ में समर्पित रूप से अपनी सेवाएं देते हैं। अभी हम उनके गीत को सुनेंगे।
ओम शांति। सबसे पहले आप तालियां बजा के अपना स्वागत स्वयं कर लें। हमारे साथ हमारे हल्दर भाई हैं, प्रायः गीत लिखता हूं और मिलकर के हम सब गाया करते हैं, लेकिन आज की रचना आपने की है, इसलिए एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत कर लें।
दिल से कहता वाह 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 रे वाह कोलाबा, दिल से कहता है वाह 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 रे वाह कोलाबा। आप आए बाहर लाए कहते मीठे बाबा, कहते मीठे बाबा, ये है मधुबन पावन पावन काशी कहो या काबा। आप आए बाहर लाए कहते मीठे बाबा।
आप तालियां बजा सकते हैं, खुशी का मौका है।
मन को लुभाए दिल बहलाए आबू अरावली, चारों ओर हरियाली है खुशहाली खुशहाली। चेटी चंद यहाँ पल पल थदड़ी मनाओ, बाबा कहते आओ बच्चे झूमो नाचो गाओ। बेहद प्यार लुटाते रहते हम सबको बाबा, हम सबको बाबा। आप आए बाहर लाए कहते मीठे बाबा, स्वागतम शुभ स्वागतम, स्वागतम शुभ स्वागतम।
हम सब किसके लाल हैं, किसके लाल हैं? झूले लाल के।
तालियां दिल से बजाएं, अपने लिए बजा सकते हैं।
झूले लाल के लाल हो करते बड़ी कमाल, गायत्री दीदी की सेवा है ही बेमिसाल। झूले लाल के लाल हो करते बड़ी कमाल, गायत्री दीदी की सेवा है ही बेमिसाल। राजयोग का राज समझने बाबा के राजे आए, अरावली की चोटियां स्वागत में हर्षाए। बाहें पसारे देखो स्वागत करते हैं बाबा, करते हैं बाबा। आप आए बाहर लाए कहते हैं बाबा, आप आए बाहर लाए कहते हैं बाबा। ये है मधुबन पावन पावन, काशी कहो या काबा, काशी कहो या काबा। दिल से कहता है बाबा बाबा, वारवी को लावा। स्वागतम शुभ स्वागतम, स्वागतम शुभ स्वागतम, स्वागतम शुभ स्वागतम, स्वागतम शुभ स्वागतम, स्वागतम शुभ स्वागतम।
बहुत बहुत धन्यवाद सतीश भाई और हल्दर भाई। अक्सर जो बता रहे थे कि हमेशा सतीश भाई ही लिरिक्स लिखते हैं, गीत लिखते हैं, लेकिन ये गीत स्पेशल हल्दर भाई ने लिखा है। कितनी अच्छी पंक्तियां हैं, राजयोग का राज समझने बाबा के राजे आए। अब तो आपको राजा बनना ही पड़ेगा, नो ऑप्शन एट ऑल। तो इसीलिए आप स्वराज्य अधिकारी बनकर जाएं यहां से, और इतने अच्छे स्वयं पर राज्य करने वाले कि आपको देखकर दूसरे भी ऐसा सीखेंगे। तो हम दोनों भाइयों का दिल से धन्यवाद करते हैं। अभी आदरणीय शीलू दीदी जी।
ओम शांति, ओम शांति, फिर से सभी कहे एक साथ ओम शांति। हमारी दादी जानकी जी कहते हैं जब ओम शांति कहते हैं, मैं तीन बार बोलूंगी, पहले यही कह देते हैं और फिर कहते हैं, तीनों का अर्थ बताते हैं। पहला है मैं कौन, दूसरा है मेरा कौन, और तीसरा है मैं किस लिए हूँ, क्यों हूँ मैं यहाँ इस दुनिया में। तो ओम शांति का पाठ हम सबको यहाँ पूरा पक्का पढ़ना है। तो सबसे पहले परमात्मा शिव, ब्रह्मा बाबा, मम्मा, हमारी सर्व वरिष्ठ दादियां, सर्व वरिष्ठ भाई और यहाँ के सर्व मधुबन निवासी भाई बहने, और हमारे तरफ से भी आप सभी कुलाबा निवासी भाई बहनों का बहुत 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 स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आप बहुत ही भाग्यशाली आत्माएं हो, क्योंकि यह स्थान कोई साधारण स्थान नहीं है, यह परमात्मा के ही कर्म भूमि, वरदान भूमि, तपस्या भूमि, परिवर्तन भूमि का ये स्थान है। हमारी वरिष्ठ दादियों ने कितने वर्षों तक यहाँ तपस्या की, ब्रह्मा बाबा मम्मा आप देख रहे हैं दोनों, जो हमारे अलौकिक रूप से मात पिता हैं, उन्होंने कितनी यहाँ तपस्या की है, दादियों ने तपस्या की है, और उसी तपस्या के फलस्वरूप ये जो वातावरण है यहाँ, बहुत ही चार्ज्ड वातावरण, बहुत ही पावरफुल वातावरण है। तो ऐसे स्थान पर आप अगले 3 दिन रह करके इस सुंदर कार्यक्रम में भाग लेंगे, और जैसे आपको इंदिरा बहन ने सारी दिनचर्या बताई, सुबह से लेकर के रात्रि तक आपके अंदर श्रवण कला बहुत ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि आप बहुत कुछ सुनेंगे, और मुझे विश्वास है, केवल उम्मीद नहीं है, विश्वास है कि आप जो भी यहाँ सुनेंगे, समझेंगे, अनुभव करेंगे, अपने जीवन में लाएंगे, वो एक अमिट छाप आपके जीवन पर बन जाएगी। ऐसे नहीं होगा कि यहाँ से गए और सोडा वाटर हो जाएंगे, ऐसे नहीं होगा। ये आप भी अपने अंदर दृढ़ संकल्प करना, यहाँ से कुछ संकल्प करके जाएंगे, एक दृढ़ता धारण करके जाएंगे कि हम अपने जीवन को स्पिरिचुअल बनाएंगे, आध्यात्मिक बनाएंगे। भौतिक जीवन तो बहुत जी लिया, जन्म जन्म जी लिया, लेकिन अब ये बाकी जो जीवन का थोड़ा सा समय है वो हम प्रभु हवाले करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सब छोड़ करके यहाँ बैठ जाना है, ये भी नहीं। परमात्मा हमें यही कहते हैं कि घर ग्रस्त में भी रहो, अपनी जिम्मेदारियां भी संभालो, सब कुछ करो, नौकरी धंधा जो भी आपका है सब कुछ करो, लेकिन कैसे जियो, जैसे कमल का फूल। कमल का फूल कीचड़ में रहकर भी न्यारा रह सकता है, इसलिए कमल के फूल की कितनी महिमा होती है। विष्णु के हाथ में कमल का फूल दिखाते हैं, देवी देवताओं का अंग अंग कमल से भेंट किया जाता है, नयन कमल, चरण कमल, हस्त कमल, हृदय कमल, एक एक अंग कमल से भेंट है। क्यों कमल से भेंट किया जाता है एक एक अंग? क्योंकि संसार में रहकर भी संसार से जैसे न्यारा, हमारी जो ये कर्म इंद्रियां हैं, अभी मुख की बात सुनाई, पर मुख के साथ और भी कई कर्म इंद्रियां हैं, वो कैसे हमारे सदा वश में रहे, हम अपनी इंद्रियों के राजा बन जाएं, ये हमें राजयोग सिखाता है। यहाँ राजा होके रहना है, पता है ना, स्वराज्य अधिकारी, तो सबसे पहला राज्य अपने स्वयं पर, अपनी इंद्रियों पर, फिर उसके बाद दूसरा राज्य अपने मन पर। इंद्रियां भी हमारे वश में हो, ये पंच इंद्रियां, उसके पंच ये रस, तो इन रसों के पीछे कैसे मन विचलित हो जाता है और मन विचलित होकर के भटकने लगता है। तो फिर कई बार हम शिकायत करते हैं, क्या करें, मन तो लगता नहीं है, मन लगता नहीं है, क्योंकि मन इंद्रियों के वश है। इंद्रियां जहां खींच के ले जाती वहीं मन चला जाता है। जीभ रस, कन रस, स्पर्श रस, नेत्र रस, गंध रस, ये पंच इंद्रियों का रस है। वो ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, ये शरीर के साथ जुड़ी हुई है। लेकिन फिर ये 10 इंद्रियों के ऊपर कहा जाता है अज्ञारस, 11वां रस। वो 11वां रस कौन सा है? एकादशी करते हैं ना, 1 का 10 पर विजय, या 11स करते हैं, अर्थात कर्म इंद्रियों, ज्ञान इंद्री, जो शरीर के साथ जुड़ी हुई है, उनके ऊपर मन है। तो मन इनका राजा बन जाए, मन इनको चलाए, न कि इंद्रियां मन को चलाए। और फिर मन के ऊपर बुद्धि है, तो बुद्धि फिर मन को चलाए। अभी मन के भी गुलाम बन गए हम, जो सोचना चाहते वो तो सोच ही नहीं पाते, और जो भूलना चाहते वो भूल ही नहीं पाते। होता है ना कई बार, हम सोचते मैं ये याद नहीं करूं, नहीं करूं, जितना सोचते नहीं करूं उतनी और याद आती है। फिर हम कहते ये क्या था, क्या था, याद करूं, याद को याद नहीं आता। तो जो याद करना वो याद नहीं आता, जो भूलना वो भूलता नहीं। तो क्या कहेंगे कि मन भी वश में नहीं है, इंद्रियां भी वश में नहीं है। लेकिन कहा क्या जाता है, सोच समझ कर कर्म करो। सोचो क्या मैं करने जा रहा हूं, पहले सोचना होता है ना, फिर समझो इसका नतीजा क्या होगा, परिणाम क्या निकलेगा, फिर कर्म करो। और तब कर्म थर्ड स्टेज है। लेकिन होता क्या है, कभी कभी इतना ईगो, बॉडी कॉन्शियसनेस आने से सोच समझ तो भूल जाते हैं, सीधा एक्सटेम्पो कर लिया, फिर करने के बाद समझ आती है ये गलत किया, गलत बोला, गलत किया, फिर पश्चाताप भी होता है, फिर सोचते अच्छा अभी हो तो गया, अभी क्या करें, अभी क्या करें। तो पश्चाताप बाद में करें, उसके बदले क्या करना होगा, सोच समझ कर करना होगा। तो इंद्रियों के भी राजा, मन के भी राजा, फिर हमारे जो कर्म होंगे वो बहुत ऊंचे होंगे, क्योंकि सोच समझ कर किया। तो सबका दिल भी जीत सकेंगे, और सबका दिल जीत लिया तो कहेंगे दिलों के राजा। क्योंकि कोई भी व्यक्ति बाहुबल से, हिंसा के बल से, क्रोध के बल से, वैर दुश्मनी नफरत के बल से किसी को जीत नहीं सका है, कभी भी नहीं, किसी को वश में नहीं कर सका है, न किसी को हरा भी सका है। कई बार हम सोचते हम किसी को हरा देंगे, वो हारेगा नहीं, फिर और शक्ति से सामना करेगा। लेकिन अगर सचमुच किसी को जीतना है तो कैसे जीतेंगे, प्यार से जीतना माना उसका दिल जीतना, प्यार तो दिल मांगता है ना, तो प्यार से जीतना माना उनका दिल जीतना। और हमें भगवान कहते अगर दिल जीता तो आप सारे विश्व को भी जीत सकते हो, सारे विश्व को भी जीत सकते हो। अर्थात जिसको ही कहते हैं मन जीते जगत जीत, पर ये मन जीतना का मतलब ये नहीं कि मन को मारना है, पर इस मन को क्या विचार देने हैं, क्या सोच देना है, वो सोचने की भी कला हमें राजयोग सिखाता है, जीवन जीने की कला राजयोग सिखाता है। तो आप वो सीखने के लिए यहां आए हो, क्योंकि अगर देखा जाए हर एक इंसान योगी है, अगर हम आपसे पूछे आप योगी हैं, आप कहेंगे हम कहाँ योगी है, हम तो गृहस्थी है, ऐसे कहेंगे। पर हर एक व्यक्ति योगी है, भले गृहस्थी है, ऐसे नहीं योगी माना सन्यासी। हर एक व्यक्ति योगी है। कैसे? क्योंकि जिसके बारे में मन सोचता है उसके साथ योग है, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, चाहे कोई घटना हो, कोई स्थान हो, कोई परिस्थिति हो, जिसके विषय में भी सोचा उसके साथ योग है। योग माना कनेक्शन। पर ये योग परमात्मा से जुड़ जाए वो राजयोग है। जुड़ता तो है, सोचते तो रहते ही हम लोग सदा, परंतु अगर ये मन ईश्वर में लग जाए वो राजयोग है। और यही राजयोग भगवान हमें सिखाते हैं। अर्थात संसार में भी रहो पर संसार आप में न रहे, ये राजयोग सिखाता है। तो कैसे हम सच्चे राजयोगी बनकर इस संसार में भी रहें लेकिन संसार हमारे में न रहे, यही हमको लक्ष्य रखना है। तो आपसे हम मिलते रहेंगे। और अभी हमारे बीच शशि बहन जी आए हैं, क्योंकि आज तो केवल वेलकम का दिन है ना, आज लेक्चर्स का दिन नहीं है, तो वेलकम का दिन है। हमारी वरिष्ठ बहन शशि बहन आइए। शशि बहन आए हैं, इनका भी हम स्वागत करते हैं। और आप सबसे मिल करके आपको टोली भी देंगे, मुख मीठा करेंगे। आप भी हम दोनों शशि बहन शिलू बहन हम दोनों साथ में यहाँ रह करके इस सारे कार्य को संभालते हैं। आप इनसे मिलेंगे, देखेंगे, आप भी बचपन से ही ज्ञान में हैं। जैसे हम आए वैसे भी आप आए, और मम्मा बाबा उनकी पालना ली है। आप करनाल से हैं लेकिन बचपन से ही आपने बाबा मम्मा की पालना ली, और यहाँ पर 19 ब्रह्मा बाबा ने ही आपको यहाँ नियुक्त किया, और शुरू से यहाँ की मैनेजमेंट आप देखते रहे हैं। और अभी भी आपका विशेष स्वागत भी करेंगे और साथ साथ मुख मीठा भी करेंगे, और हम आपसे मिलते रहेंगे। ओम शांति।
ओम शांति। कोलाबा निवासी, कोलाबा और से संबंधित सेवा केंद्र के भाई बहनों से, जो भी भाई बहनें वहां से आए हैं तो वो कितना न सौभाग्यशाली हैं। कुछ भाई बहनें कोलाबा सेंटर पर जाते हैं, कुछ वहां प्रोग्राम्स के लिए जाते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो कोलाबा के कनेक्शन से यहाँ पर वरदानी भूमि, तपस्वी भूमि, योग की तपस्या की भूमि में आप सब पधारे हैं। आप सभी का सौभाग्य तो पहले से ही परमात्मा ने बना ही दिया है, क्योंकि कोलाबा एक ऐसा स्थान है जहाँ पर जब शुरू शुरू में इस विद्यालय या इस इंस्टीट्यूशन की सेवाएं आरंभ हुई, बहुत छोटे छोटे स्थान होते थे। बॉम्बे में भी स्थान तो मिलते ही नहीं थे, कोलाबा एक बहुत छोटा सा स्थान था जहां पर हमारे इस विद्यालय के संस्थापक पिता श्री प्रजापिता ब्रह्मा, फिर मातेश्वरी, दादी प्रकाशमणि, दादी रतन मोहिनी, दादी जानकी, सब दादियां और वरिष्ठ भाई बहने वहां पर जाकर के रहते थे। अभी तो यहाँ पर बाबा ने हम बच्चों के लिए इतने सुंदर स्थान बना दिए हैं, इतने कंफर्टेबल स्थान बनाए हैं कि जहाँ पर हम आराम से रह सकते हैं। उस समय तो छोटी छोटी जगह में रहते थे, लेकिन उस स्थान की विशेषता अपनी ही थी। वहां पर रह करके पिता श्री जी ने ज्ञान के स्रोत के द्वारा सारे विश्व के अंदर एक आध्यात्मिकता की लहर फैलाई। पिताश्री जी कहा करते थे कि एक समय आएगा कि यहाँ से ही सारे विश्व के अंदर ये राज्यों का आध्यात्मिक मैसेज जाएगा। और कोलाबा से ही शुरू हुआ था कि कुछ भाई बहने वहां पर गए विदेश में, आज विश्व के 140 देशों में राज्योग सेवा केंद्र हैं। और दूसरी बात हम आपको बताएं कि वहां पर ही जो आप देखते हैं प्रदर्शनियां हैं, अभी तो बहुत अलग अलग स्थान हैं, उस समय पिताश्री जी के टाइम पर एक एग्जीबिशन बनाई जाती थी, चित्र बनाए जाते थे, तो पिताश्री जी देखते थे, उनको गाइड करते थे कि आप ऐसे चित्र बनाओ कि देखने वाले को उसके द्वारा एक्सपीरियंस हो। तो मैं ये सोच रही थी कि आपका जाने अनजाने में परमात्मा ने गुप्त रीति से भाग्य बना दिया। अभी हम परमात्मा की याद में बैठेंगे, फिर उसके बाद थोड़ा बताएंगे। आप सभी ऐसे भाग्यशाली स्थान से आए हैं, भाग्य तो परमात्मा ने लिख दिया है, लेकिन उस भाग्य को आगे बढ़ाने के लिए, भाग्य को सौभाग्यशाली बनाने के लिए वो एक रास्ता है परमात्म स्मृति, राज्यों का अभ्यास, परमात्मा के साथ सर्व संबंधों का अभ्यास करेंगे तो उससे उनके द्वारा ऐसी शक्तियां, ऐसे गुण, ऐसी प्राप्तियां होती हैं। जैसे दुनिया में भी देखते हैं कोई बच्चा ऐसे स्थान पर जन्म लेता है, कहते हैं भाग्यशाली, लेकिन वो बच्चा अपने भाग्य को न पहचान करके कुछ ऊपर नीचे काम करता है, कहेंगे सब कुछ मिलते हुए भी इसने अपना भाग्य नहीं बनाया। कुछ ऐसे हैं जो साधारण जगह जन्म लेते हैं, लेकिन आज वो मेहनत करके कहां से कहां पहुंच जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो आप आए हैं, ये वो स्थान है जहां मेहनत कम प्राप्ति ज्यादा, क्योंकि पिताश्री जी ने, सभी दादियों ने, वरिष्ठ भाई बहनों ने यहाँ पांडव भवन में बैठ करके कई घंटों घंटों तक, सारे दिन में घंटों घंटों तक योग की तपस्या करते थे। उस तपस्या के द्वारा जो भी यहाँ पर आता उसे बहुत गहन अनुभव होते थे। और जैसे वो यहाँ पर आते थे ना, हम आपको बताएं, हमारे पास तो कई उदाहरण हैं कि एक तो बार ऐसा हुआ कि एक व्यक्ति किसी से मिलने आया, अपनी बहन या दूर के रिलेशन मिलने आया, वो बाहर बैठा था, तो हमने उसको बोला आप बाहर बैठे, अंदर बैठ जाओ। कहता ये मिलना तो बहाना है, लेकिन यहाँ जो आंगन के अंदर परमात्म अनुभूति के लहरें आ रही हैं, बस मैं तो लहरों में खो गया। उसको ये भी पता नहीं है परमात्मा क्या है, घर क्या है, कुछ भी नहीं है, वो वहां बैठ गया, मैं अभी नहीं मिलूंगा, वो आंगन में बैठा। शाम के टाइम आप यहाँ आए, अमृत वेले आते हैं तो ऐसा टच करता है, ऐसा अनुभव होता है कि कोई शक्ति का स्रोत हमारे अंदर जा रहा है। और यहाँ आना कोई कम बात नहीं है, गायत्री बहन बहुत मेहनत करती है, मेहनत करके ले आती है, बार बार रिक्वेस्ट करती है, तो ये भी एक बहुत बड़ा भाग्य है। आप भी चलो, आप भी चलो, कई तो सदा तैयार रहते हैं और कईयों को तैयार करके लाना होता है, तो ये भी एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो जितने दिन आप रहेंगे, एक बात का ध्यान रखना है कि मैं ऐसी वरदानी भूमि में आया हूं या आई हूं, मुझे अपने लिए, अपने जीवन के लिए, परिवार के लिए और समाज के लिए कुछ न कुछ वरदान लेके ही जाना। वो वरदान आपको ऐसे अच्छे अनुभव कराएगा, संसार में रहते कई प्रकार की बातें आती है, ऊपर नीचे होता है, कभी तनाव होता है, कभी कोई परिस्थिति आती है, उसको देख करके हम इतना टेंशन में आ जाते हैं, ये क्या हुआ, मैंने तो सोचा नहीं था, मैंने तो किसके लिए बुरा किया ही नहीं था, ये मेरे सामने ऐसे क्यों आया। कभी शरीर की बात आएगी, कभी परिवार की आती है, अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट बहुत हो जाते हैं। तो उसमें क्या होता है, हम घबरा जाते हैं। तो पिता श्री जी ने कहा कि ये एक संसार का नियम है परिवर्तन। कभी आंधी है, कभी तूफान है, कभी गर्मी है, सर्दी। हम कहें बारिश क्यों आई, बॉम्बे में कितनी बारिश आई थी, स्टक हो गए थे ना, कहेंगे क्यों आई बारिश। अरे बारिश से बचने के लिए हमारे पास ऑल्टरनेट साधन है, सेफ्टी के साधन है। जब फिर ठंडी आ जाती, क्योंकि ठंड है क्या, यहाँ थोड़ी ठंडी भी है, कि फिर ठंडी से बचने के लिए साधन है ना। इसी प्रकार से जीवन को चलाने के लिए और ये छोटी मोटी बातों को पार करने के लिए वो है स्वयं को पहचानना, परमात्मा से अपना संबंध जोड़ना, परमात्मा से अपना बुद्धि योग लगा करके उनसे सर्व शक्तियां प्राप्त करना। परमात्मा को कहते हैं तू ही रक्षक, उसको कहते हैं तमेव मातः पिता तमेव बंधु सखा। माता भी वही है, पिता भी वो, सब रिलेशन उसके साथ। और वैसे भी देखते हैं जब कोई प्रॉब्लम आती है तो किसको याद करते हैं, डॉक्टर के पास जाएंगे। डॉक्टर कहेगा मैं तो सब कुछ कर सकता हूं, लेकिन ये लास्ट में डॉक्टर के हाथ। फिर डॉक्टर कहता है नहीं मेरे हाथ में नहीं है, परमात्मा के हाथ में है। तो जब ऐसा कहते हैं, जब परमात्मा ही रक्षक हैं, तो क्यों ना हम परमात्मा को अपना साथी बनाए। तो ये आपको बहुत अच्छा तरीका बताया जाएगा कि परमात्मा को कैसे अपना साथी बनाना है। अभी तो हम आपसे केवल मिलने के लिए आए। अच्छा आप सब ठीक हैं? पक्का? हाथ खड़ा करके बताओ। आराम से? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अरे यहाँ क्या प्रॉब्लम आएगी, अरे जम्मू कश्मीर जाओ, उधर जाओ, वैष्णो देवी जाओ, रास्ता रुका तो सड़क पे ही बैठे हुए, लैंडस्केप हुआ तो वहीं गली में बैठे हुए, और यहाँ तो क्या है, कुछ नहीं है, हॉल तो है, आराम तो कर सकते हैं, बैठ तो सकते हैं ना। तो इस तरह से आपका चारों तरफ से ही ध्यान रखा गया, रहने का, खाने का। और वैसे हम नहीं चाहेंगे कोई बीमार हो, यहाँ डिस्पेंसरी है, छोटी मोटी दवा चाहिए, कोई भूल जाता है तो वो भी ले सकते हैं। ठंडी है, मॉर्निंग टाइम ठंडा है, अंदर तो ठंडी नहीं लगती है, मॉर्निंग और इवनिंग ठंडा है, तो थोड़ा ध्यान रखना। और वैसे बारिश आई नहीं है इस साल, बॉम्बे में तो खूब आई, यहाँ तो आई नहीं है, थोड़ी 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 आई है बूंदाबांदी, लेकिन जब बूंदाबांदी आती है तो ये फर्श पे दौड़ना नहीं, पेड़ के बूंदे बूंदे गिरते ना तो फर्श स्लिपरी हो जाता है, वो ध्यान रखना। आप धीरा चलो, चाहे दो बूंद ऊपर आ जाए शरीर के ऊपर, लेकिन चलना धीरे, पांव तेजी से नहीं दौड़ना, स्लिप हो जाता है तो गिरने का डर रहता है। तो ये भी एक हमारे को ध्यान रखने की बातें होती हैं। अच्छा फिर से आप सबका दादियों की तरफ से, वरिष्ठ भाई बहनों की तरफ से, तपस्वी भूमि में बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है। और अभी आप सबको मुख मीठा कराएंगे, फिर उसके बाद आप सब भोजन करने के लिए जाएंगे, फिर से 9:45 बजे यहाँ आएंगे। ओम शांति, 2 मिनट बाबा की याद में, फिर उसके बाद आपको टोली मिलेगी। अच्छा जो पहली बार आए वो हाथ खड़ा करें, काफी। अच्छा नहीं, जो दूसरी बार आए हैं थोड़े। अच्छा उससे पहले जितनी बार आए वो हाथ खड़ा करें। पहली बार वाले भी काफी हैं, पहले वाले भी काफी हैं, जो दूसरी बार आए वो थोड़े हैं। अच्छा अभी 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे। यहां से आएंगे पहली लाइन वाले टोली लेकर के, इधर से चले जाए, वहां से मत जाना, क्योंकि वहां क्या होगा, चप्पल अंधेरा भी है, चप्पल आपके उधर है, फिर पांव कुछ ऊपर नीचे सामान भी रखा हुआ है, उस तरफ नहीं जाना, यहां से लेकर के उधर चले जाना।
ओम शांति। क्या कहूं मैं इस जरे हाल का, हमारी तो जिंदगी जैसे इस दुनियावी भंवर में फंसी सी रहती है, नहीं सूझता कोई रास्ता, नहीं दिखता इस कलयुगी अंधेरे में कोई प्रकाश। आज शायद चेहरे पर ये खुशी भी कभी कभार ही कुछ पलों के लिए ही आती है, ऐसे में प्यारे बाप दादा ने दिखाई सच्ची राह जीवन में आगे बढ़ने के लिए, उसी बाबत राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी गायत्री दीदी जी ने आप सभी ब्रह्मा वत्सल शक्तियों और पांडवों के सहयोग से कितने विस्तार से यह सारा इंतजाम किया। इसके लिए इंदिरा बहन जी, जिन्होंने अपने स्वागत भाषण में कितना सटीक रहने का और सभी प्रकार के पुरुषार्थ की योजना बताई, उसका आपका बहुत हार्दिक धन्यवाद दीदी जी। कविता बहन, जिन्होंने इस मशीनी युग और उसमें उलझी मानवीय संवेदनाओं की व्याख्या करी, दीदी जी ने अपने सरल शब्दों में आनंद पूर्वक जिंदगी जीने के कई उपाय बताए, उसमें मुख्य बोलने और खाने में संयम रखने की कला। इसके बाद मधुरवाणी ग्रुप, जिसमें सतीश भाई जी और हरदर भाई जी ने कितना सुंदर स्वागत गीत, जिसमें राजयोग का राज समझने आए हम सभी वत्सल। इसके बाद
टोली लेकर बैठे
रहे। आप सब टोली लेकर प्लीज बैठे रहें। और फिर हमारी शीलू दीदी जी, जिन्होंने बताया हमको कि मैं कौन, मेरा कौन और मैं किसके लिए आई हूं यहां। उन्होंने इस तपस्या स्थल की महत्ता कितने सरल शब्दों में हम सभी को बताई और इस भट्टी में आए सारे ग्रुप को उत्प्रेरित किया। और लास्ट में हमारी शशि दीदी जी, जिन्होंने इस यज्ञ का सुंदर इतिहास, कुलाबा भूमि का भाग्य जिसमें हम सभी जुड़े हुए हैं, उन्होंने बताया कि कैसे हमें परमात्मा से सर्व संबंध और राजयोग का अभ्यास करना है और अपने इस सुंदर भाग्य को जो कि जग गया है यहां आने से और कितना सुंदर बनाना है। इन सभी के लिए मैं दीदी जी की तरफ से और कोलाबा की तरफ से आप सभी का हृदय से जी आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। और मैं आप सभी भाई बहनों से कहूंगा कि एक जोरदार करतल थोड़ी से अपने हृदय के उद्गार उपस्थित करें।